मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 8 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मांडवी पांडे, आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, कौशिक दास, आप मिदनापुर पश्चिम बंगाल से हैं, रविता, आपका गांव है बाबूगढ़ छावनी हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं, पवित्रता नई दिल्ली से हैं, अभिषेक राज, आपका गांव है भिखारी घाट जिला खगड़िया बिहार से हैं, संयोगिता टाटिया, आप हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ज्ञानेंद्र मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से, विकास कुमार नाथ द्वारा समस्तीपुर बिहार से और संजीत कुमार डुमरी जिला पूर्णिया बिहार से। तो मांडवी, कौशिक, रविता, पवित्रा, अभिषेक, संयोगिता, ज्ञानेंद्र, विकास और संजीत, आप सभी 9 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक छोटी सी सूचना है और सूचना खासकर यह है कि कल मेरा दिल्ली के रामजस कॉलेज में एक लेक्चर है कि आप आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस विषय पर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उसमें लेक्चर है। और जैसा कि कॉलेज मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, यह सभी के लिए ओपन रखा गया है, तो जो स्टूडेंट इस लेक्चर में आना चाहते हैं वो रामजस कॉलेज आ सकते हैं। समय इसका सुबह 10 बजे का निर्धारित किया गया है और पहले आओ पहले पाओ जिसे कहते हैं सीट्स, उसके आधार पर उन्हें एंट्री मिलेगी। तो मित्रों, इस सूचना के बाद मैं अब आता हूं अपने न्यूज पर। मुख्य विषय के रूप में आज हम लोग जिस इशू पर बात करने जाएंगे या करेंगे, मुझे लगता है कि उसका अनुमान आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया होगा। और मुझे सच पूछे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अगर आप 6 महीने से मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपने आज जिस विषय को चुना होगा वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा। इसलिए मित्रों, मैं अभी विषय के शीर्षक की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात मैं दूसरे न्यूज आइटम्स को की चर्चा करने के बाद करूंगा। राइट, तो आप सब अपने अपने मन में सोच लें कि वह कौन सा विषय हो सकता है। और ये अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि देखिए अंततः आपको अपनी ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी कि आप अखबार पढ़ते हैं, 20 पेज का अखबार होता है, 15 मिनट की न्यूज रेडियो पर सुनते हैं, 1 घंटे की न्यूज आप टीवी चैनल पर सुनते हैं, दूरदर्शन पर, तो इनमें से सारे आपके काम के नहीं होते, बहुत थोड़े से आपके काम के होते हैं, बहुत ही थोड़े से। तो वो थोड़े से कौन से हों, ये क्षमता तो आपको अपने अंदर पैदा करनी ही होगी। डेफिनेटली मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा पर्पज आपकी थाली में मछली परसना नहीं है, जो चाइनीज कहावत है, बल्कि मछली पकड़ने लायक बनाना है, यानी कि आपके अंदर क्षमता पैदा करनी है कि आप खुद इस बात का निर्णय कर सकें। तो आइए पहले दूसरी खबरों को मित्रों देख लेते हैं, और आज दूसरी काफी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि आपने न्यूज में सुना होगा कि जो पर्सनल लॉ है उसमें एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा, पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक। राइट, इस तरह के जब विधेयक पारित होते हैं सामान्यतः तो बहुत अधिक चर्चा इन पर नहीं होती है, यानी कि पहले से ही कोई कानून है और उस कानून में आप कोई संशोधन करना चाहते हैं। अगर वह कानून कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक विरोध का कारण नहीं बनता है तो फिर संसद में उस पर बहुत चर्चा भी नहीं होती है, अखबारों में न्यूज में भी आपको बहुत अधिक पढ़ने और सुनने को नहीं मिलता है, और नतीजा ये होता है कि आपके ध्यान में नहीं रहता, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी तरह का यह विधेयक है, पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक। इसके तहत मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रहा हूं कि जैसे कुष्ठ रोग, अभी तक कुष्ठ रोग को एक प्रकार से विवाह विच्छेद के लिए, तलाक के लिए आधार माना जाता था। अब इसके इस आधार को खत्म करने की बात की जा रही है कि कुष्ठ रोग विवाह विच्छेद का आधार नहीं बन सकता, राइट। तो अब आप देखिए कि अब है यह सामान्य सी बात अगर उस तरीके से हम सोचें तो, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से सोचें, सामाजिक दृष्टि से सोचें, मानवता की दृष्टि से सोचें तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि कुष्ठ रोग उस तरीके से संक्रामक रोग नहीं है। फिर कुष्ठ रोगी जो हैं उन्हें हमें समाज के मुख्य धारा में लेकर चलना ही चाहिए। हमारा मानवीय दृष्टिकोण भी उनके प्रति बहुत ही समानता के भाव का होना चाहिए, और गांधी जी तो इसके जीवंत प्रमाण रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा की है। तो इस लिहाज से अब यह संशोधन चाहे छोटा सा ही दिखाई दे रहा हो, सामाजिक दृष्टि से काफी मायने रखता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप सबको बताना ही चाहिए। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, न्यूज में सुना होगा आपने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर। हम किसे किन्हें अपने देश के नागरिक मानेंगे उसमें संशोधन करने की भी बात चल रही है, और इस विधेयक को लेकर असम में एक राजनीतिक दल असम गण परिषद, इसकी चर्चा बहुत पहले हम लोगों ने की थी जब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की घोषणा कर दी है, खासकर इस नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के। इस पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगे बात होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा दूसरा मुख्य विषय है, इस पर हम लोग फिर संभव हुआ तो कभी बात करेंगे। एक छोटी सी खबर है फ्रेंड्स, वो है कि अब जो FM चैनल हैं, यहां तक कि जो निजी चैनल हैं FM के, वे भी अब न्यूज प्रसारित करेंगे, न्यूज जो डेली न्यूज आती है। और एक क्यों प्रसारित करेंगे इसके बारे में हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सही बात कही है, मतलब मैं तो एग्री करता हूं कि हमारे देश के नागरिकों को यह मालूम होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो उन तक पहुंचनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि शिक्षित होने का एक बहुत बड़ा आधार यह भी है कि देश में क्या हो रहा है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देश और दुनिया में, जानकारी होनी चाहिए। और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले के रूप में तो आपके लिए निहायत ही जरूरी है। FM चैनल धीरे धीरे लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी इनके स्टेशन केंद्र खुल रहे हैं, उनकी रेडियो की पहुंच भी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली अगर उसमें इस तरह के न्यूज आएंगे तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव इन बातों पर पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो 2 साल पहले इस पर प्रश्न पूछा भी गया था, वो है कि भारत ने अब चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है उसके संचालन का कार्यभार संभाल लिया है, चाबहार बंदरगाह। इसके बारे में 2 साल पहले प्रश्न पूछा गया था, और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ईरान के साथ इसका समझौता हुआ था, महत्वपूर्ण घटना इसलिए है, देखिए एक तो ईरान इस्लामिक देश है, राइट। इस्लामिक देश की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की बात आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को हवा देकर भारत को परेशान कर रहा है, लगातार उलझाए हुए है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो भारत के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि इस्लामिक देशों के सामने वह अपने पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से रखे, और इसके लिए दोस्ताना संबंध निहायत ही जरूरी है। वैसे भी भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, ठीक है ईरान हमारे ईस्ट में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य एशिया पश्चिम एशिया के देशों में तो आता ही है, तो ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैप उठा करके आप देखेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा, अदरवाइज बातें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। जो सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि चाबहार बंदरगाह से जो ग्वादर बंदरगाह है उसकी दूरी मात्र 80 किलोमीटर। ग्वादर नाम आपके लिए नया नहीं होगा, ये पाकिस्तान में है और इसको चीन डेवलप कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन और भारत के इस क्षेत्र में आप यूं कह लीजिए एक तरह से प्रतिद्वंदिता सी चल रही है। प्रतिद्वंदिता तो नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि चीन जब अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और भारत उस शक्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो इस दृष्टि से चाबहार बंदरगाह एक संतुलन स्थापित करेगा। आखिरी खबर है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इससे तो अखबार भरे पड़े हैं आज, बकायदे हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री ने हमारे भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई भी दी है और इस पर आज आर्टिकल्स तक देख पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स तक आप पढ़ सकेंगे। 71 सालों के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यह टेस्ट श्रृंखला उसके देश में जीती है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो खासकर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। मित्रों, अब आइए मैं मुख्य विषय के बारे में बात करता हूं, और मुख्य विषय के तहत आप फैसला कर चुके होंगे कि मुझे किस पर बात करनी चाहिए, और डेफिनेटली आपका निर्णय बिल्कुल सही है कि सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बारे में कैबिनेट ने निर्णय लिया है और इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश भी किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आज कर दिया जाएगा, ये फैसला किया गया है। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक होगा और इस पर खूब जमकर बहस भी होगी। मित्रों, ये जो टॉपिक है मुझे लगता है कि फिलहाल तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत हॉट टॉपिक हो गया है, हॉट टॉपिक। तो इसकी तैयारी आप करेंगे कैसे? इसकी तैयारी करने के लिए आपको स्पष्ट रूप से इस पूरे के पूरे टॉपिक को कुछ भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। मैं उन भागों की चर्चा करता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या नहीं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको अखबारों में पढ़ने को मिल जाएंगे, उनसे कोई फायदा विशेष होना नहीं है, राइट? तो मैं खासकर उनकी बात करूं जिससे आपको मेरी इसको सुनने का जो आप समय दे रहे हैं वो उसका लाभ मिल सके, वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। पहली बात कि सरकार ने इस विधेयक में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए हैं, मैं अंडरलाइन करूंगा फ्रेंड्स कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यानी कि क्राइटेरिया क्या रखा है, वो आपको आज अखबारों में मिल जाएंगे कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय से कम हो, जमीन 5 एकड़ से कम हो, मकान इतने स्क्वायर फीट का हो, इतने हो, ये आपको जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो मालूम हो। पहला क्राइटेरिया, ये तो स्थायी रहेगा ऑलमोस्ट, जब बहस होगी तो हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो। दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो है इसका इतिहास, क्या इससे पहले भी इसके बारे में कुछ किया गया था, क्या डिमांड हो रही है। तो ये बिल्कुल स्थायी है, आप एक बार देख लेंगे, यहां बीच बीच में बातचीत होती रही है, एक आयोग ने इसके बारे में कहा भी था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी इसका आरक्षण दिया जाना चाहिए, जब नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बकायदे इस तरह का विधेयक पेश भी किया था। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है, ये उसका दूसरा स्थायी पक्ष हो गया जो आपको टू दी पॉइंट मालूम होने चाहिए, टू दी पॉइंट। अब हमारा जो तीसरा पक्ष आता है इस टॉपिक की तैयारी का मित्रों, वह आता है कि इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं कि वास्तव में आर्थिक रूप से भी जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बारे में आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, राइट? इसके बाद चूंकि पक्ष में आप बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको विपक्ष में भी आपको पॉइंट्स नोट करने होंगे कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक वर्ग ऐसा होगा कि कुछ उनको लगता होगा कि नहीं नहीं मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये इसका अगला पार्ट हो गया। इसके बाद फिर आपको देखना होगा कि अब जो व्यवस्था की जाने वाली है, अब होगी नहीं होगी हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, है ना, वो एक राजनीतिक पॉइंट है कि एक दिन तो लोकसभा का सेशन बचा हुआ है, इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन, बजट सेशन होगा, फिर इसका संविधान संशोधन विधेयक है तो इसे 2/3 से पारित कराना होगा, फिर राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी, उतना तो अब वक्त ही नहीं है वर्तमान सरकार के पास, फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले इनकार कर चुका है तो सुप्रीम कोर्ट कहीं इस पर फिर से कोई बात खड़ी न कर दे, तो ये सब अलग मुद्दे हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। तो अब जो लास्ट एक इसका पक्ष बचेगा वो बचेगा कि यह कितना व्यावहारिक होगा, यह कितना व्यावहारिक होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि यह कितना व्यावहारिक होगा, इनफैक्ट तब तक आप ये जो विधेयक पेश किया गया है इसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल होना तो जरूरी है ना, दिया तो जा रहा है लेकिन ये व्यावहारिक कितना होगा, इससे कितना लाभ होगा, या ये यूं ही एक राजनीतिक कदम है। और याद रखिए कि जब आप इस पर अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात तथ्यात्मक होनी चाहिए और धारणात्मक नहीं, तथ्यात्मक कि आप तथ्य के साथ बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? आप बकायदे कह सकते हैं कि जो 8 लाख रुपए वार्षिक इनकम रखी गई है वो ऑलरेडी बहुत अधिक है, तो 5% लोग ही केवल निकल पाएंगे, 95% लोग ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि इनकम टैक्स कितने लोग भरते हैं और इनकम टैक्स भरने के लिए कितने क्राइटेरिया की जरूरत है। हमारे यहां से 130 करोड़ की आबादी है और मुश्किल से 3-4% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 5%, तो 95% लोग एलिजिबल हो गए। लैंड एरिया 5 एकड़ जमीन जो हमारे देश में है वो केवल 14% लोगों के पास है, यानी कि 86% जो हमारे किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। 86% किसान एलिजिबल हो गए, फार्मर्स एलिजिबल हो गए। और इसके बाद जो जमीन वगैरह की बात कही गई है, अलग अलग तरह की 1000 स्क्वायर फीट में पर मकान हो, ये उसको अगर ऐड कर लिया जाए तो फिर वो उसके अंदर केवल 20% लोग आते हैं, यानी कि 80% लोग उस क्राइटेरिया में एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कि 10% आरक्षण दिया जा रहा है और एलिजिबिलिटी कितनी हो गई इनकम के आधार पर, 95% लैंड खेती की हर जमीन के आधार पर, 86% और मकान के आधार पर 80%। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए जो परसेंटेज आ रहा है वो 10% आ रहा है, तो ऐसे में लगता है कि बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं होगा। ये मैंने एक पक्ष रखा और चूंकि अब वक्त नहीं है तो अब दूसरा पक्ष मैं नहीं रख पा रहा हूं, और वैसे भी अभी तो इस पर राजनीतिक बहस होगी और डेफिनेटली उसमें लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष तो यही है कि भैया जो गरीबी है वो केवल जाति तक सीमित नहीं है, बहुत से ऐसे सवर्ण हैं जो कौम सामान्य वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में बहुत गरीब हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनको क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए। तो ये उसके पक्ष में दिया गया एक बहुत जबरदस्त तर्क है, तो इसे कैसे व्यावहारिक बनाया जाए और क्या किया जाना चाहिए इन सब पर आप विचार करें। लेकिन यह टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।